मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कुंठा से मुक्ति के ऊपर, यानी कि जो मेरे अंदर कुंठा है अंततः कैसे मैं उस कुंठा से मुक्ति पा सकता हूँ। एक बात मैं शुरुआत में कहना चाहूँगा कि कल मुझे कुछ मेल मिले हैं जिसमें कुछ मेरे प्रिय श्रोताओं ने ये जानना चाहा है कि सर, यदि कुंठा में इतनी ताकत होती है कि वह अपनी मुक्ति के लिए खुद उपाय करती है तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, आप मुझे लगता है कि कुंठा के बारे में ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको इस तरह से विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि चूंकि उसमें ये चीज़ होती है तो हमें करने की क्या ज़रूरत है। जैसे पृथ्वी उत्पन्न करती है ना, देखिए घास फूस हो रहे हैं, जंगल अपने आप हो रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि पृथ्वी उत्पन्न करती है तो इसके आधार पर आप नहीं कह सकते कि जब पृथ्वी उत्पन्न करती है तो हमें खेती करने की क्या जरूरत है। अगर वह उत्पन्न नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि या तो वह जमीन नहीं है या वहां बीज नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर कुंठा से मुक्ति के प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, तो मान करके चलिए कि फिर वह कुंठा उतनी गहरी नहीं है। तो जब गहरी नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो ये बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर मेरे अंदर कुंठा होगी तो वो अपने आप वो कोशिश करेगी और कोशिश करने के बाद वो अपने आप मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि यदि आप मेरी बात को इस तरीके से ले रहे हो तो शायद अपनी बात समझाने में मैं असफल हो रहा हूं। दोस्तों, आइए अब कुंठा से मुक्ति के बारे में कुछ बातें करते हैं। प्रकृति का नियम मेरे लिए जीवन के सर्वोत्तम नियमों में से है। मतलब हम अपने जीवन के बारे में बहुत सारे संकेत, बहुत सारे नियम, बहुत सारे मार्गदर्शन प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं कुंठा की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा प्रश्न है और प्रश्न यह है कि आपने महसूस किया होगा, देखते ही होंगे, जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में आंधियां आती हैं, चक्रवात आते हैं, आंधियां आती हैं, राइट? सवाल यह है कि गर्मियों के दिन में ही आंधियां क्यों आती हैं? जब आप इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको भूगोल में जाना पड़ेगा, भूगोल विषय में जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि चूंकि गर्मी के दिनों में हीट ज्यादा होती, ताप अधिक होता है, तो ताप अधिक होने के कारण जो वायु है वो सूखने लगती है, हर चीज सूखने लगती है, तो वायु भी सूखने लगती है, तो उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज सूखती चली जाती है तो उसका वजन कम होता चला जाता है। हवा के साथ भी यही होता है, वायु का वजन कम होता चला जा रहा है, और जब किसी वस्तु का वजन कम होता चला जाता है तो फिर वह आकाश की ओर उठना शुरू करता है, राइट? तो हवा भी ऊपर उठना शुरू कर देती है क्योंकि उसका वजन कम हो गया है। तो जब हवा ऊपर उठना शुरू कर देती है तो जमीन के आसपास का जो क्षेत्र है, जो स्पेस है, वहां हवा की कमी होने लगती है क्योंकि जो हवा थी वो ऊपर उठ गई। तो जब यहां हवा की कमी हो रही है तो सवाल यह है कि अब क्या किया जाए। तो जो प्रकृति है वो शून्य को स्वीकार नहीं करती। तो अब ये जो यहां खाली स्पेस बन गया है, एक ब्लैंक सा स्पेस बन गया है तुलनात्मक दृष्टि से, तो अब इस स्पेस को भरने के लिए आसपास की जो हवाएं हैं वो तेज गति से इधर चलती हैं। तो जब इधर तेज गति से चलती हैं तो वे तेज गति से चलती हुई हवाएं हमें आंधी जान पड़ती, उसे ही हमने नाम दे दिया है आंधियां। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि हमें किसी भी तरह के खालीपन का एहसास हो रहा है, देखिए वहां खाली आ गया, हवा के ऊपर उठ जाने से उस स्पेस में एक खालीपन आ गया, हम भी किसी कुंठा की वजह से अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा कुछ हो जाता, खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो अब इस खालीपन को भरने के लिए आप क्या करते हैं। मैंने कल दिखावे की बात की थी, कुछ लोग इस खालीपन को भरने के लिए दिखावा करना शुरू कर देते हैं और फिर विचित्र किस्म के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो जब आप इस खालीपन को पूरे शिद्दत के साथ महसूस करते हैं तो फिर आपको लगता है कि मुझे इसे भरना है, तो अब आप इसे कैसे भरेंगे। ये जो खालीपन है प्रकृति प्रदत्त अगर है तो सीधी सी बात है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अब आप क्या करेंगे। तो फिर आप एक बाईपास रास्ता निकालते हैं, ठीक है यहां भीड़ भाड़ है तो मैं बाईपास से होकर के जाता हूं। तो आप सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूं कि सभी का जो ध्यान है वो मेरे काम पर चला जाए, मुझ पर नहीं, मुझ पर से हट करके सबका ध्यान मेरे काम पर चला जाए और सही मायने में मेरा काम ही मेरा नाम बन जाए, तो लोग फिर मेरे काम पर ध्यान देंगे, मुझ पर नहीं। और ऐसी स्थिति में सारी चीजें बिल्कुल उलट हो जाएंगी, लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा कि इसका रंग कैसा है, इसका कद कैसा है, इसका रूप कैसा है, बिल्कुल भी नहीं। और सच पूछिए तो इतिहास इस बात का साक्षी है। दोस्तों, ये कोई मेरा अपना सिद्धांत नहीं है, है ना, मैं मनोवैज्ञानिकों के आधार पर ही अपने ढंग से आप तक बात पहुंचा रहा हूं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व में जो बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं, जो महानतम लोग हुए हैं, ये माना जाता है कि वे सब या अधिकांश तक कहना चाहिए, सब तो नहीं कहना चाहिए, किसी न किसी तरह की कुंठा से ग्रसित थे। और उस कुंठा ने, यानी कि उस इन्फीरियोरिटी ने उन्हें इस बात के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित किया कि तुम्हें इससे मुक्त होना है, तुम्हें इससे मुक्त होना है, तुम्हें इससे मुक्त होना है। और इसके बाद उन लोगों ने अपनी मुक्ति के रास्ते तलाश लिए। दोस्तों, ये एक संयोग ही है कि अभी मैं आपसे कुंठा के बारे में बात करने जा रहा हूं, और इसी बीच कल मेरा एक वीडियो AFEIS के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, एक वीडियो रिलीज हुआ है। इस वीडियो का नाम है सुभाष चंद्र बोस कैसे बने थे IAS। इसका एग्जैक्ट नाम है कैसे बने थे सुभाष चंद्र बोस IAS, ये एग्जैक्ट टाइटल है, कैसे बने थे सुभाष चंद्र बोस IAS। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सुने और देखें और ध्यान से सुने, और आप सुनने के केंद्र में केवल इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को रखें बस, और देखें कि ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनसे क्या क्या करा रही, कैसे कैसे हो रही है। हालांकि उसमें जो केंद्रीय बिंदु है वो IAS बनने के उनके जद्दोजहद को लेकर के है, लेकिन चूंकि अब आप इस कुंठा के बारे में काफी कुछ मुझसे जान चुके हैं, सच पूछे तो मुझे तो लगता है कि मुझसे भी ज्यादा आप एक्सपर्ट हो गए होंगे डेफिनेटली, तो आप इसे जब इस बिंदु को केंद्र में रख करके सुनेंगे तो शायद कई कई अर्थ निकाल सकेंगे जो इनफैक्ट मैं नहीं निकाल सका हूं। उसका कारण यह है कि मेरे केंद्र में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहां नहीं था, मेरे केंद्र में IAS बनने की उनकी जो प्रक्रिया थी वह थी, लेकिन आप ऐसा कर लेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे से यह काम कर सकेंगे। प्लीज आप इसे जरूर एक बार सुने, मिस न करें, बहुत ही थोड़ी देर का है। मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद आपको शायद मेरी बात पर और ज्यादा यकीन हो सके। तो दोस्तों, आखिरी में बस दो पंक्तियां, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि हर तहरीर से पहले, यानी कि ईश्वर जब आपके भाग्य को लिख रहा है तो वो आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे अनुकूल, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल तुम्हारा भाग्य लिख देता हूं। मुझे लगता है कि यही है कुंठा से उबरने का एक तरीका। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब मैं अपने इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा, और अब चूंकि 3 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो सकेगी, इस बीच में आप होली का त्यौहार मनाएंगे, तो मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से होली की आप सबको बहुत बहुत पूर्व शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां भी देता हूं, और साथ ही एक छोटी सी अपील भी करता हूं कि आप देख रहे हैं कि कोरोना कैसे फिर से दोबारा आक्रमण करने की पूरी बुरी तरह से मुद्रा में आ गया है, तो बेहतर होगा कि हम इसे पूरी सतर्कता और शालीनता के साथ मनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।